आज हम भगवत गीता के थारो अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान उसकी 6 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। सब लोग मेरे पीछे बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे श्लोक को दोहराने के प्रयत्न कीजिए। बोलिए जथाकाश जथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र सर्वत्र गोमह। जथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमह तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति पधारय। तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति पधारय। तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि पधारय। जथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति पधारय। इसके अर्थ मेरे पीछे बोलिए। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझमें स्थित जानो। ये कौन किसको बोल रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। किस विषय में बोल रहे हैं? अपना विभूति भाव महानाता के विषय में बोल रहे हैं। कहते जैसे ये चलायमान वायु बहुत वेग से बहती है, परंतु वो आकाश के अंदर ही स्थित रहता है, आकाश को उल्लंघन नहीं करता है, आकाश के अंदर ही स्थित रहता है। उसी प्रकार सारे जीव अर्थात ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड भगवान के अंदर इसी प्रकार समाये हुआ है। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसके तात्पर्य और इसके भावार्थ को हम समझे। श्रील प्रभुपाद की जय। और ध्यान पूर्वक सुनिए। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वो आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है, उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार भी होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्य से आकाश रहता है। उपनिषद में कहा गया है जब भी सवात बरते हैं, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। ये तैतृय उपनिषद 2.8.1। बृहत अरण्यक उपनिषद में 3.8.9 में कहा गया है एतस्य वा अक्षरस्यः प्रशासनः गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विद्रुतौ तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी गाभ्या पृथ्वी विद्रुतौ तिष्ठत। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी 552 में कहा गया है, जब चक्षुरेश सवितं सकल ग्रहणं राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजः जस्याज्ञया भ्रमति संधृतकाल चक्र गोविंदनादि पुरुषं तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तुम भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के बस में है। इसकी व्याख्या इस अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोमवार के कार्यक्रम में आप सदिच्छा से भगवत इच्छा से आप यहाँ पधारे हैं, परंतु भगवान की महिमा को सुनना चाहिए कि भगवान कितने महान है। लोग साधारणता कहते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज गुड, परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं हाउ ग्रेट ही इज, हाउ गुड ही इज, नोबडी नोज। भगवान कितने महान है, कितने सुंदर है, इसको सब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान अपने विभूति को, अपने महानता को स्वयं प्रतिपादित करते हैं इस ज्ञान के द्वारा, अर्जुन के माध्यम से। तो भगवान इस अध्याय में अपने सबसे गुह्यतम ज्ञान, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंटल नॉलेज, इसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि सारे जीव मुझ में हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझसे ये सारी सृष्टि निकली हुई है, मया तथा इदम सर्वम, ये जगत की सुंदर रूप की रचना मेरे द्वारा हुई है। जगतम व्यक्त मूर्तियां और मत स्थानी सर्वभूतानी, मुझ में ही सारे जीव हैं। सारे जीवों की पालन पोषण भगवान के द्वारा ही होती है। न चाहं ते सब अस्तिता, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। कैसे नहीं है कहते, जिस प्रकार जथा, जिस प्रकार वायु सर्वत्र, और आकाश को क्या कहा गया है, महान। वायु की शक्ति को आप जानते हैं, बड़े बड़े तूफान से हम देख सकते हैं, ये वायु की वजह से हम चलते हैं। ये श्वास निकल जाए, ये हवा निकल जाए, तो ये फिर शरीर नीचे लेट जाता है, खड़े भी नहीं रह सकते। ये सूक्ष्म वायु है, इसको हम कहते हैं प्राण वायु। और ये वायु सर्वत्र है, ये फैन से भी हमको मिलता है, नहीं तो पसीना छूट जाएगा गर्मी से, ताप से। ये हवा ही हमारी पोषण कर रहा है, जैसे गर्मी से हमको हवा बचाता है, और हमारे जीवन की रक्षा भी वायु से होता है। और ये वायु क्या है, भगवान कहते हैं मद भयात बहती बात सूर्यस्तपति मद भयात। भगवान जो उनकी 8 विभूतियां बताते हैं, जो अपरा शक्ति के अंतर्गत है, वो है 8। वो क्या है, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति यम्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अग्नि के बाद भगवान कहते हैं वायु, भूमि आपा नल वायु। ये जो 5 अपरा चीज हैं, निकृष्ट, जिससे कि हमारे ये शरीर बनी हुई है, इतने शरीर हम देख रहे हैं, कीड़े मुकड़े से लेकर के देवता तक, सबके शरीर इस 8 तत्वों पंच महाभूत से बनी हुई है, 3 सूक्ष्म 5 स्थूल। इन बच्चों को थोड़ा संभाल के रखिए। तो इसमें जो वायु है, यही सबकी जीवनी शक्ति है। ऐसे वैदिक साहित्य से प्रमाण मिलता है, जल के बिना भी कोई जी सकता है, भोजन के बिना भी जी सकता है, परंतु वायु के बिना जी नहीं सकता। ऐसे ध्रुव महाराज, उन्होंने भोजन छोड़ दिए, जल पीना भी छोड़ दिए, जो आखिरी महीना, जो पंचमा महीना जो चल रहा था, उसमें से उन्होंने अपने प्राण वायु को भी नियंत्रण करके अपने अंदर रख दिए, जिससे कि सारे प्राणियों का जो जीवन शक्ति है, ये सब केंद्रित हो गया ध्रुव महाराज के शरीर में, और सभी जीव प्राय मृत प्राय हो गए, सब मरने वाले थे। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना की, इसलिए जो प्राण वायु है इसे हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु है। आप जानते हैं कौन से वायु है? प्राण, अपान, समान, उदान, ज्ञान, क्रुम, क्रुकिल, धनंजय और आखिरी देवदत्त। तो ये जो 10 प्रकार की वायु है ये अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में कार्य करता है। जो अंदर हम लेते हैं इसको कहते हैं प्राण वायु, जो नीचे छोड़ते हैं ये है अपान वायु, और समान जो हमारे भोजन को पचाता है। ऐसे अलग अलग वायु की अलग अलग कार्य है। जो आंख की पत्ता खोलता है, बंद हो जाता है, कभी हम अंगड़ाई लेते हैं, तो उसी प्रकार पचन कार्य में जो भोजन करते हैं एक वायु भी है। जो अग्नि को बढ़ाता है, वैश्वानर अग्नि को बढ़ा देता है, अहम वैश्वानर, जैसे हवा से अग्नि तेज होता है, तो ये वायु सभी प्राणियों का प्राण होने पर भी वो आकाश में टिक। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं ये संसार में बहुत प्रकार की जीव है, उसमें से बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चींटी से लेकर के हाथी तक है। तो इसी प्रकार की जितनी सारी जीव है ये सारे जीव को मैं अपने अंदर ही धारण करके रखा हूँ। मत्स्थानी सर्वभूतानी, भगवान कहते हैं मत्स्थानी मेरी अंदर ही सारे जीव हैं। तो फिर इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि तथा सर्वाणी भूतानी मत्स्थानी इति पधारय। तो भगवान कहते हैं किस प्रकार मेरे अंदर रहते हैं, कि जिस प्रकार हवा आकाश में ही रहता है उसी प्रकार सारे जीव मेरे अंदर स्थित है। ये एनालॉजी को हम बहुत सरलता से समझ सकते हैं। इसमें भगवान की महानता व्यक्त हुई है। जैसे आकाश स्थिर है उसमें ही ग्रह नक्षत्रें तारकाएं सब उसमें टिके हैं, आकाश में ही रहते हैं। जब हम रात्रि में देखते हैं ये सारे ग्रह नक्षत्रों ने उस आकाश में ही स्थित है, आकाश उनको धारण करके रखा। तो इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में यह आकाश से ही शब्द उत्पन्न हुआ, जो शब्द आपके कान तक पहुंचता है। इसलिए जो रेडियो के माध्यम से हम सुनते हैं इसको कहते हैं आकाशवाणी। ये आकाश से ही ध्वनि का शब्द उत्पन्न हुआ, और शब्द की जब परिवर्तन हुआ तो उससे वायु उत्पन्न हुआ हवा, और इस हवा से उत्पन्न हुआ अग्नि। हवा में है कौन सी शक्ति? स्पर्श शक्ति है, जिसे अनुभव होता है ठंडी गर्मी। और फिर इस अग्नि के द्वारा तेज व प्रकाश तत्व उत्पन्न हुआ, जैसे कि हमारी दृष्टि खोली। जो आंख में हम देखते हैं यदि प्रकाश न हो तो ये आंख का कुछ शक्ति नहीं देखने के लिए, हम अपने आप को देख नहीं सकते हैं कि हम कैसे ड्रेस पहने हुए हैं। तो ये है प्रकाश, जिसको कहते हैं तेज। और अग्नि जब अपने ताप के विकार हुआ इससे उत्पन्न हुआ जल, और जल में हमको क्या अनुभव होता है? जो खाने पीने की वस्तु में जो स्वाद है ये रस, रस तत्व। जैसे कि ये सृष्टि के साथ साथ हमारे शरीर में क्या है? रसना जीवा। और ये रस का विकार होने पर उत्पन्न हुआ मिट्टी व पृथ्वी, जिसमें क्या है? गंध, जो हम नाक के द्वारा व हमारे घ्राण इंद्रिय के द्वारा हमको पता चलता है ये सुगंधी है कि दुर्गंधी है। तो इसे भगवान सब पांच 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 का पांच जोड़ी बनाए, 25, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच तत्व, पांच तन्मात्राएं, ये सब इंद्रियों के साथ जुड़। परंतु ये सारे तत्व को आप देखिए, हमारे 6-7 फुट की शरीर है, इसमें हाथ है, पैर है, नाक है, परंतु इसके अंदर शरीर एक प्राण शक्ति है जो सबको कार्य करने में शक्ति व ऊर्जा प्रदान करता है। यदि प्राण शक्ति नहीं है तो आंख नहीं खोल सकता है, देख नहीं सकते। यदि प्राण शक्ति नहीं है हम सुन नहीं सकते, भोजन भी नहीं कर सकते। तो सारी चीज इस प्राण शक्ति पर, इस वायु पर टिके हैं। इसलिए वायु को कहा जाता है सर्वत्र गो, और वायु सब जगह में प्रवेश कर सकता है। ऐसे कोई स्थान नहीं है कि वायु नहीं है, सब जगह में। परंतु आकाश के बिना वायु नहीं रह सकता, जो खाली स्थान है वहीं पर वायु रहता है। कभी कभी हम देखते हैं गर्मी में जिस स्थान में वायु खाली हो जाता है तो तुरंत उसमें क्या होता है? चक्रवात पैदा होता है, खासकर गर्मी में। परंतु इस वायु को कैसे आकाश धारण करके रखा है? तो इस एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं, जो कि सारे जीव को धारण करके रखे हैं। आकाश कभी अशांत नहीं है, आकाश प्रशांत है, स्थिर है, धैर्यवान है। तो भगवान उसी प्रकार कितने शांत हैं, जैसे माँ के गर्भ में जब शिशु बढ़ता है, गर्भवती माँ को ये पता चलता है कि माँ ना बेटा व बच्चा मेरी कोख में अभी खेल रहा है, कभी कभी पैर हिलाता है, परंतु माँ इस कष्ट को सहन कर लेती है। माँ संतान को जन्म देने के बाद संतान के सारी उपद्रव को वो सहन करती है। कभी कंधे पर चढ़ जाता है बच्चा, कभी सोच भी कर देता है, कभी कभी स्तनपान करते समय उसको छोटे छोटे दांत में माँ के स्तन को भी काट देता है, परंतु माँ सब कुछ सहन कर लेती, क्योंकि माँ के अंदर क्या है, ममता, माँ स्नेह का संबंध है। उसी प्रकार भगवान इतनी महान है, आप आकलन लगा सकते हैं, सभी जीवों का उपद्रव को भगवान सहन कर लेते हैं, उनके पास कितनी धैर्य शक्ति है। जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं, ये मिट्टी को खुदाई करते हैं, ये माता पृथ्वी सबको सहन करती है, उस पर कितने बड़े बड़े मेट्रो चलता है, कितनी भारी वस्तु उन पर चला के लेके जाते हैं, परंतु पृथ्वी माता कभी प्रतिवाद नहीं की। तो उसी प्रकार सारी जीव, चाहे वो टेररिस्ट हो या साधु हो, सभी जीवों को भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं। ये कहावत है कि चींटी को खाने के लिए भगवान भी देते हैं और हाथी को खाने के लिए भगवान ही सप्लाई करते हैं, चींटी के लिए कर्ण, हाथी के लिए मन। तो भगवान सभी की पोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी जीवों का स्रोत है, स्रोतम सर्वभूतानां। इसलिए एक बार सभी मुनि ऋषियों ने एक सभा में ये प्रश्न उठाए कि सृष्टि में जितने सब बड़े बड़े देवता हैं, इन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है और किन की आराधना होना चाहिए, मनुष्य किसकी आराधना करने से, किसकी पूजा करने से उनको श्रेय प्राप्त होगा। तो सब अलग अलग प्रकार के मत प्रदान किए, कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। आखिर में उन्होंने कहे कि इस सृष्टि में तीन मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों ने अलग अलग कार्यभार लिए हैं, सृष्टि करने के कार्य ब्रह्मा, पालन करने के कार्य विष्णु और संहार कार्य के लिए महेश। तो ये तीनों मुख्य देवता है, ये तीनों की आराधना करना चाहिए। परंतु मुनि ऋषि ने कही नहीं, हम एक देव की आराधना करें जिससे कि सबको कल्याण प्राप्त हो। सभी देव पूजाओं की, सारी पूजा की जो फल है, एक देव की पूजा से हमको प्राप्त हो जाए। तो ऐसा ये तीनों में से कौन है, इसकी परीक्षा लेने के लिए सभी मुनि ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को ये तीनों से परीक्षा करके, तो भृगु जी आप लोग जानते हैं कि भृगु संहिता है, जैसे कि हम भूत भविष्य और वर्तमान के विषय हम जान सकते हैं, तो बड़े विद्वान है। तो इन्होंने परीक्षा लेने के लिए पहले गए किसके पास, पहले अपने पिताजी के पास गए, और भृगु जी ब्राह्मण के वस्त्र धारण किए हुए थे, है तो ब्रह्मा जी के पुत्र ब्राह्मण है, और ब्रह्मा जी कमंडल हाथ में धारण करके और उनकी दाहिना हाथ में सुबाता जिसमें वो यज्ञ में घी डालते हैं, तो यज्ञ करने के लिए वो जा रहे थे प्रातः काल। तो उसी समय भृगु जी अपने पिताजी के सामने आए, परंतु पिताजी के पास आकर के कोई प्रणाम नहीं किए, कोई मर्यादा से व्यवहार नहीं किए, क्योंकि वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो उनकी क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल था, उन्होंने कुछ किए नहीं, बस चुपचाप खड़े रहे। उतने में से ब्रह्मा जी का मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, देखो ये बच्चा होता तो मैं सहन कर लेता, इतने बड़े बेवकूफ है, ये मर्यादा नहीं जानता है, एडिकेट्स नहीं जानता है कि पिताजी को प्रणाम करना चाहिए, चुपचाप आकर खड़ा रहता है। ब्रह्मा जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और भृगु जी पढ़ लिए, उनका पेपर में लिख लिए कि पिताजी का मन में क्रोध उत्पन्न हो गया प्रणाम न करने से, अर्थात उस एग्जाम में फेल हो गए, फिर आगे चल पड़े। तो उस समय भगवान शिव, जिनको हम महेश्वर कहते हैं, बड़े त्यागी हैं, कोई भोग की इच्छा नहीं है, सारे देवता विलासी होते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, बहुत सुगंधी माला धारण करते हैं और अपने शरीर को हमेशा ही सजा के रखते हैं, परंतु उनमें से शिव नहीं है। शिव की श्रृंगार थोड़ा अलग ढंग से है, ये कोई कभी माला धारण नहीं करते हैं, इच्छा हुई तो कुछ सांप गले में डाल दिए। उनके पास कोई ऐसे देवताओं के पास जैसे उड़ान है, वाहन है, जो बहुत द्रुत गति में चलते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के हंस वाहन है, उनकी पुत्र सॉरी शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, तो उनकी भी वाहन है, गणेश जी के वाहन है, चूहा है, तो दुर्गा जी की शेर है, अद्भुत प्रकार के इनके पास सब गाड़ियां हैं, उस पर यात्रा करते हैं शिव परिवार के। परंतु शिव चलते बहुत स्लो, ध्यान में मस्त रहते हैं, तो उनके मर्सिडीज है बैल, और कभी इच्छा हुआ तो शरीर को श्रृंगार करने के लिए स्मशान के राख उठाते हैं और शरीर में लगा देते हैं, यही सेंट पेंट है उनकी। तो शिव जी बहुत सहनशील भी है और थोड़े बातें पर वो संतुष्ट हो जाते हैं, आशुतोष। थोड़े भी उनको बेल पत्ता और जल दे दीजिए, संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की बराबर उनके पास भी शक्ति है। भगवान विष्णु जैसे गंगा जल और तुलसी पत्ता से संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे भी भगवान शिव भी बेल पत्ता और पानी से संतुष्ट हो जाते और वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। तो भृगु जी सोचे इनके लिए थोड़ा से क्वेश्चन पेपर थोड़ा कड़ा करना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। इन्होंने क्या किए ना, भृगु जी जब कैलाश पर्वत की ओर बढ़े तो पार्वती जी सूचना दिए कि पतिदेव आपकी भाई आपको दर्शन करने के आ रहे हैं। तो शिव जी तुरंत उठ करके अपने भाइयों भाई को स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। आइए 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 भृगुदेव आइए, पधारिए, आज मेरे कैलाश को आप पवित्र कर दिए हैं। इतना कहते हुए जब वो भाई को आलिंगन करने के लिए दौड़े तो भृगु जी तो परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो कहे, अरे हट, आपका कोई पवित्रता है नहीं, शौचता है नहीं, आप मुझे आलिंगन करने के लिए आ रहे हो, कुछ तो स्नान नहीं करते हो, कुछ देवता जैसे तो नहीं रहते हो, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार भृगु जी बहुत भर्सना की। ये सुनते ही शिव जी का जो भाव उमड़ा था भाई को आलिंगन करने के लिए, सब भाव सूख गया और तुरंत क्रोधित होकर के अपने राइफल उठा लिए। क्या है वो? त्रिशूल। पार्वती कह रही, ये क्या कर रहे हो? देख रहे हैं ना, आपके भाई हैं, ब्राह्मण हैं, और आज उनको आप हत्या करोगे, कल न्यूज़पेपर में हेडलाइन में छप जाएगा कि शिव जी ने अपने भाई को ही मर्डर किया है। सब लोग कहेंगे शिव कैसे है, भाई को मारने वाला शिव कैसे हो सकता है, मंगल कैसे कर सकता है दूसरे के? ये मत करिए, ब्रह्मा हत्या के पाप लगेगा। तो बहुत प्रकार अनुनय विनय करके पार्वती जी ने भगवान शिव को शांत कर दिया। शिव जी कहे भृगु जी के चेहरा देखना नहीं चाहता, और भृगु जी तो थोड़े गए थे शिव जी के साथ हैंडशेक करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए गए थे। जो जो परीक्षा था पेपर उन्होंने दे दिया, तो प्रैक्टिकली वो क्रॉस मार्क कर दिए। तो फिर आगे बढ़े भृगु जी, कहां कहां चले, वैकुंठ की ओर, भगवान नारायण के पास। और उस समय नारायण को दर्शन करने के लिए कोई एंट्री कार्ड का आवश्यकता नहीं था, ब्राह्मण के लिए स्वच्छंद प्रवेश का अधिकार था। तो भृगु जी सीधा भगवान नारायण के पास पहुंच के वहां जाकर के देखे क्या कि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण संभान कर रही है। और भृगु जी गए, वो सोचे ये नारायण की भी परीक्षा ले लेता हूँ, बहुत कड़ा पेपर में। पहले तो उन्होंने मन से परीक्षा लिए, दूसरा परीक्षा वाणी से था, और तीसरा परीक्षा शरीर से। उन्होंने पहुंचते ही भगवान जब दृष्टि डाले, अरे भृगु जी आए हैं, इतना कहते हुए जब उठ रहे थे उसी समय भृगु जी ने गए और भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर एक लात जोर से मारी, और भगवान तुरंत खड़े होकर के, ओह भृगु जी आपका चरण को कितना कष्ट लगा होगा, आपके सुकुमल चरण और मेरे बक्षस्थल इतनी कठोर है पत्थर की तरह, बहुत दर्द हुआ होगा। और भगवान उस भृगु जी के चरण को संभान करने लगे, मसाज किए। लक्ष्मी तो एकदम क्रोध से तमतमा हो गई, अरे क्या कर दी, मेरे पति को लात मारे बिना कुछ किए। लक्ष्मी जी वहां छोड़ करके भगवान का चुप रहो, लक्ष्मी जी ब्राह्मण है, पूजा करने की हमारी अधिकार है, हम पूजा नहीं किए, बहुत बड़ा अपराध किए। भगवान इसे भृगु जी के चरण को बहुत समय तक सहलते रहे, किंतु बहुत दर्द हुआ होगा। और भृगु जी के चरण को जिस समय भगवान नारायण ऐसे सहला रहे थे, भृगु जी का शरीर स्तंभीभूत हो गया, आंख से आंसुओं की धारा बहने लगा। कहते देखो मैं थोड़े से मेरे पिताजी को अभ्यर्थना नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, पिताजी का मन में क्रोध, भाई को थोड़ा से कटु वचन बोल दिया, राइफल उठा लिए, परंतु ये भगवान नारायण के वक्षस्थल पर मैं अपने पैर से प्रहार किया, परंतु उनकी हृदय में कितने धैर्य कितनी करुणा है, सबको सहन कर लिए। और उतना नहीं, भगवान कहे हे ब्राह्मण देव, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको ठीक से स्वागत नहीं कर पाया, आपकी अभ्यर्थना नहीं कर पाया, आप ब्राह्मण में श्रेष्ठ है, आइए बैठिए, आज वैकुंठ लोक पवित्र हो गया। उतना नहीं, मेरी हृदय बहुत कलुषता से ग्रस्त था, आपकी चरण के स्पर्श से ये सारे कलमश दूर हो गया, और मैं चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए आपके इस चरण चिन्ह मेरे वक्ष स्थल पर रहे, और मैं स्मरण करते रहूं कि ब्राह्मण की कृपा मुझे मिली है। अभी तक भी भगवान नारायण के वक्ष स्थल में भृगु जी के चरण चिन्ह शोभायमान है, पिल्ले बाल के रूप में, जिसको कौस्तुभ कहते हैं। भृगु जी, भगवान नारायण के इसी प्रकार व्यवहार को देख करके सारे मुनि ऋषियों के पास ये सूचना दी, देखिए मैं तीनों की परीक्षा लेके आया और सभी बात कह सुनाए, कसके बाद निर्णय लिए कि भगवान विष्णु के अलावा ये संसार में सहन शक्ति किसके पास नहीं है। इसलिए शिव जी भी पार्वती को कहे कि देखो, केवल नारायण नहीं, नारायण की भक्त ही भी इसी प्रकार गुण से जुटते हैं। नारायण परा सर्वे नक्तस्य न बिभ्यति स्वर्ग पदर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम्। कि नारायण की परायण भक्त जो होते हैं उनकी अंदर भी यही समानता है, तो स्वर्ग नरक में भेद नहीं करते हैं, ना ही मुक्ति चाहते हैं ना भुक्ति चाहते हैं, अपि तुल्य अर्थ दर्शनम्। पिछले बार हम आपको सुनाया था, दुर्वासा जी एक महान राजा, विष्णु भक्त नारायण परायण, अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने क्रोध प्रकट करके उनको मारने के लिए एक कृत्या कन्या को उत्पन्न की, परंतु इस विषम परिस्थिति में अम्बरीश महाराज धैर्य पूर्वक खड़े रहे, भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे, और जब सुदर्शन चक्र एक साल के लिए दुर्वासा जी के पीछे पीछे उनको दंड देने के लिए चलते रहा, ये अम्बरीश महाराज की प्रार्थना से सुदर्शन शांत हो गया और भगवान दुर्वासा जी को कहे, जाओ मेरी भक्त के पास, मैं आपको रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भक्त के हृदय में मुझसे भी अधिक करुणा है, क्योंकि उनके हृदय में मेरी प्रति प्रेम होने के कारण वो सबको समान दृष्टि में देखते हैं। मयिर्वंद हृदया साधव समदर्शन बसी करो अंतिमा भक्त्या सत स्त्री सतपति जथा। जैसे कि सती स्त्री अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से अपने पति को वशीभूत कर लेती है, उसी प्रकार मेरी भक्त जिनके हृदय में मेरी प्रति प्रेम भावना है, वो भी सबको समान दृष्टि में देखते हैं। साधव समदर्शी, उनके कोई शत्रु नहीं होते हैं ना कोई मित्र होते हैं, जिसे भगवान गीता में कहते हैं सम अहम सर्वभूतेषु न मे दोषी अस्ति न प्रिय। तो भक्त भी धनी गरीब उच्च नीच की भावना नहीं रखता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में नारायण के प्रेम है, ये काम की काजल नहीं पहनता है, उनके अंदर क्या है प्रेम है, इसलिए सभी जीवों के अंदर वो भगवान को ही दर्शन करता है। प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेष विलोक जन्ते जन श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जो समदर्शी नहीं है वो प्रेमी नहीं बन सकता है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही अपने महानता को व्यक्त करते हैं। अरे एक अंग्रेज में कहावत है, एज फादर एज सन, जैसे बाप है बेटा भी ऐसा है, तो बेटा को देखकर कि बाप का अनुमान लगा सकते हैं। यदि कुछ कोई बच्चे ऐसे शैतानी करते हैं ना, तो कहते हैं उसका माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। तो भक्त के ऐसे समान गुण को देख करके, ऐसे आदर्श को देख करके दूसरे लोग भी सोचते हैं कि उनके प्रभु भी ऐसे महान होंगे। प्रहलाद जी को कितने कष्ट दिए उनके पिताजी, हार गए। ये सहिष्णुता गुण जिनके पास है वो सबसे शक्तिमान है। भगवान के अंदर यही सहिष्णुता गुण है, आकाश के पास ये सहिष्णुता गुण है, समुद्र अशांत नहीं है, उनके अंदर कितने लहर आता है, उनके अंदर कितने दिव्य रत्न छिपा हुआ है, परंतु कभी घमंड नहीं दिखाता है, अपने सीमा को उल्लंघन नहीं करता है। अगर समुद्र अपने सीमा को उल्लंघन कर जाए तो सुनामी आ जाएगी, समुद्र सबको सहन कर लेता है। इसलिए भगवान की कृपा को समुद्र के साथ तुलना की गई है, करुणा सिंधु, तो उसी प्रकार उनकी सहनशीलता को आकाश के साथ तुलना किए गए, ये सभी उपद्रव को सहन कर लेते। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं, ये सृष्टि में जितने बड़े बड़े देवता हैं, देवेंद्र से मुनिन्द्र से लेकर के, सब उनकी आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, उनके आंख के इशारे से सभी भयभीत हो जाते हैं। जमराज स्वयं सबको भयभीत करने वाला है, मृत्यु के अधीश्वर है। परंतु भगवान को देखते ही, उनके पलक को देखते ही मृत्यु शरन्ति मदभया, स्वयं जमराज भी भयभीत हो जाते हैं। और यही कृष्णा जब स्वयं किसी प्रेमी भक्त के सामने आ जाते हैं, उनके डर से स्वयं डर जाते हैं। जब मृत्यु को डराने वाले हैं, लेकिन प्रेमी भक्तों की डर से वो भी डर जाते हैं। आप जानते हैं कौन ऐसा प्रेमी भक्त है जो भगवान को डरा सकता है? ये कौन हो सकता है, कौन है? इसके उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है। इस हस्तिनापुर की जो पांडव की माँ एक सुंदर स्तुति से ये अभिव्यक्ति कर रही है, देखिए मुझे आश्चर्यचकित कर रही है ये बात कि जमराज को भयभीत करने वाले ये आज माँ की छड़ी देख करके डर रहा है। गोप्या डडे तई कृता गसिदामता याते दशास्र कलिलं अंजन संभ्रमाख्यं वक्त्रं निनीय भयभावनयास्तितस्य सामा विमोहयति वीरपि दत्विभेति। वो इतना डर गए थे, इतना डर गए थे माँ की छड़ी को देखकर कि उनके सारे शरीर कांप रहे हैं, पसीना से लथपथ हो गया है, आंख से आंसुओं बह रहा है, और ये ऐसे शरारत कर रहे थे किए थे जिस कारण से शर्म की मारे से उनका मुख नीचे हो गया था। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य, और क्या काम किए थे ना, थोड़े से माखन चोरी कर लिए थे, मटका फोड़ दिए थे, बस इतने में बात पर। और भगवान कहते हैं इस प्रकार दंड मुझे बहुत आनंद प्रदान करता है। देखा जाए तो भगवान की हालत खराब हो गया था, परंतु वो भगवान कहते हैं माता मरे पुत्र भावे करई ताड़न अति ही न ज्ञाने मरे करे लालन पालन। परंतु मात्र स्नेह से भगवान बंधे रहते हैं, ये भी उनकी एक महानता है। सबको डराने वाले अपने प्रेमी भक्ति से डर जाते हैं, सबको अपने गुण में बांधने वाले व्यक्ति छोटे से रसी से प्रेम के रज्जू से बन जाते हैं। और एक महीना तक भक्त उनको पूजा करते हैं, नमो देव दामोदर, सब आरती घुमाते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी महानता है, कितने बड़े त्याग है। थोड़े से हमारे पास धन होता है, कोई हमको मंदिर में अच्छे से इज्जत नहीं करता है, हम पूरा क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी मान हानि का केस भी कर लेते हैं। परंतु तीन लोग के ईश्वर माँ के हाथ में डांड खा करके कहते बहुत मुझे आनंद मिला, बहुत धन्यवाद। कभी कभी गोपियां उनको गाली देते हैं, अरे कपटी छलिया चोर, भगवान का तो बहुत अच्छा लगा, मुझे इतना इस्कॉन मंदिर में भी अच्छा नहीं लगता है गोविंदम आदि पुरुषम, परंतु तुम्हारी गाली खा करके मुझे बहुत आनंद मिलता है। प्रिया यदि मान करी करही भरसन अति वेद स्तुति हैते सही हरे मरमन, कहते मुझे वैदिक स्तुति से भी अधिक आनंद मिलता है तुम्हारा गालियां सुनकर के। तो ये कृष्ण की महानता है, सबको सहन करके सबको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। वो आनंद चिंघन चितघन स्वरूप है, यही सबको आनंद देने के लिए अभी कुछ दिन के बाद प्रकट होंगे, ये नंद के भवन में आनंद को बढ़ाएंगे। तो इस प्रसंग पर आप लोग सुनेंगे तो इस गीता की ये जो श्लोक है कि भगवान कितनी महान है, सबको सहन कर लेते हैं, किसके बदला नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि दुष्टों को जब संहार करते हैं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मुक्ति बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं बिना साय च दुष्टता, उनकी दुष्कृति को नष्ट कर देता। कितने बड़े बड़े असुर आए भगवान के स्पर्श प्राप्त किए, उतने राक्षसी अपने स्तन में जहर लगा करके हलाहल जहर लगा करके आई थी मारने के लिए, परंतु भगवान कितनी दया की भंडार है। ऐसे राक्षसिनी रुधिरासिनी जो बच्चों को मार करके उनकी खून पीने वाली है, उनको भगवान ने माँ की गति प्रदान की थी। ओहो बकियम स्तन कालकूटम घंसयाप्ताय जदाप्यस्वाधि लोभे गतिं भातृचितं ततन्या कंबदयालुं शरणं व्रजेम। इसे कौन दया के सागर है, मारने वाले को राक्षसिनी को भी मां की गति प्रदान करते हैं। अधासुर बकासुर केसी तृणावर्त जितनी बड़े बड़े असुर आए, भगवान उनको मुक्ति प्रदान की है। कि भगवान ही वचन कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं गच्छ। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये असुरों का मुक्ति इसलिए मिल गया कि भगवान के आदेश को पालन करके ब्रज में चल गए थे, जहाँ भगवान कृष्ण नित्य निवास करते हैं, ब्रजधाम। ब्रज का मतलब जाना, पैदल में चल करके ब्रजन। तो ये लोग सब गए थे भगवान की धाम में, ब्रजधाम, इसलिए उनको मुक्ति मिल गया। इसलिए ब्रजधाम की यात्रा करना चाहिए, जन्माष्टमी महोत्सव को अच्छे से मनाना चाहिए, इस प्रकार भगवान की महानता को जानकर। हमारे अंदर सब भी कुछ ना कुछ ऐसे आसुरी की वृत्तियां हैं, तो सिर्फ भगवान की पहुंच जाते ही ये वृत्तियां नष्ट हो जाती है। ये भगवान की महानता है। जैसे आकाश की पहुंच जाते ही वायु शांत हो जाता है, ऐसे भगवान वसंत की पहुंच जाते ही हमारी मनोवृत्ति भी शांत हो जाता है। हम इसी प्रकार आए, भगवान की महिमा को श्रवण करें और भगवत भक्ति में लग जाए, तब फिर हमारी विचित्त मन, अशांत मन शांत हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर के सेशन है, शायद 11 मिनट बचा है, आप लोग का यदि कोई सवाल व प्रश्न है पूछ सकते हैं। किसी की प्रश्न है, माताओं में प्रभु जी में कोई प्रश्न है, किसी की संकोच कर रहे हैं सबके सामने पूछने के लिए। एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।